समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो दिव्या, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट दिव्या तोमर। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, बिजनेस कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Home Minister Amit Shah says government to soon introduce national counter-terrorism policy and strategy, asserts strong ecosystem created in the country to fight terrorism.
वन रैंक वन पेंशन योजना के 10 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा OROP अपने सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सेंटर डबल्स पेनल्टीज फॉर फार्मर्स एंगेज इन स्टबल बर्निंग।
त्योहार मनाकर लौट रहे यात्रियों के लिए रेलवे कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा।
ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू बैन चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 16 फ्रॉम एक्सेसिंग सोशल मीडिया।
और किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
And Divya, now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Cancer Awareness Day. Well, to start off, let's start with the words of John Diamond, who very famously said, "Cancer is a word, not a sentence."
बिल्कुल अभिषेक, आप कैसे जीते हैं, क्यों जीते हैं और अपने जीने के तरीके से कैंसर को हराते हैं, ये कहा है स्टुअर्ट स्कॉट ने। आज श्रोताओं, आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है और ये दिवस 2014 से प्रतिवर्ष 7 नवंबर को आयोजित किया जाता है। इस दिन की स्थापना सितंबर 2014 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस का उद्देश्य जनता को कैंसर, इसके उपचार और जीवित रहने की दर में सुधार के लिए शीघ्र हस्तक्षेप के महत्व के बारे में शिक्षित करना है।
Yes, Divya, and it also marks the birth anniversary of Marie Curie, the Polish-French physicist and chemist, whose groundbreaking discoveries of radium and polonium have played a key role in cancer treatment. Madame Marie Curie was a trailblazing physicist and chemist who gave her life to advance the field of radioactive materials, which laid the foundation for modern radiation therapy in the fight against cancer. And succumbing slowly to radiation poisoning, she was a true luminary in the realm of radiation. She gave the gift of radiotherapy to the field of cancer treatment, which also afforded her the Nobel Prize.
इस दिन लोगों को नगरपालिका चिकित्सालयों, सरकारी अस्पतालों और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS सुविधाओं में मुफ्त जांच का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे पास समाज में कैंसर से बचे लोगों की वास्तविक जीवन की बहुत सारी कहानियां हैं जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि शीघ्र पता लगाने, सही उपचार और तैयारी से पूरे भारत में कैंसर रोगियों के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।
Yes, Divya, and cancer is a large group of diseases that can start in almost any organ or tissue of the body when abnormal cells grow uncontrollably, go beyond the usual boundaries to invade adjoining parts of the body and or spread to other organs. The latter process is called metastatizing and is a major cause of death from cancer. A neoplasm and a malignant tumor are other common names for cancer. Lung, prostate, colorectal, stomach and liver cancer are the most common types of cancer in men, while breast, colorectal, lung and cervical and thyroid cancer are the most common among women.
बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने। और कैंसर किसी भी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं और कोशिकाओं का शरीर के किसी विशेष अंग में असाधारण रूप से बढ़ना ही और उसके बाद में उस अंग में चर्बी की एक गांठ बन जाती है जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर हमारी सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। ट्यूमर दो तरह का होता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलता है जबकि बेनाइन नहीं फैलता है। लेकिन कैंसर में अभिषेक ये कहते हैं कि जीवन शैली एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि आजकल जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम लोगों का होता जा रहा है कि अनहेल्दी फूड खाना और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वजन बढ़ता है, एक्सरसाइज हम लोग कम करते हैं तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है।
Here I'd like to add something, Divya. Like the silver lining in fight against cancer is that in today's world we have made so much rapid strides in the medical field that cancer can be combated and with the right kind of treatment people have come out of cancer. It's not a thing that the earlier times when you had cancer and there would have been no other option to get well, but now we can come out of cancer with the rapid advancements we have made in the field of treatment and treating cancer, isn't it?
बिल्कुल, प्रमुख जोखिम कारकों में अगर हम देखें तो उनको कम करके हम कैंसर से बच सकते हैं और 30-50% तक कैंसर से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। प्रमुख जोखिम कारकों में तंबाकू का उपयोग, शराब का उपयोग, आहार, पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आना, एक्सरे के बार बार संपर्क में आने से, प्रदूषण और दीर्घकालिक संक्रमण से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन उपचार के तौर पर अगर हम विकल्पों में देखें तो सर्जरी, कैंसर की दवाएं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी कारगर उपाय हैं।
Yes, and cancer is a leading cause of death in India with over 9,30,000 cancer-related casualties registered in 2022. And as per the report by the National Library of Medicine, 1 in 9 Indians are at risk of developing cancer in their lifetime and the case rate is likely to increase by 12.8% in 2025 as compared to 2020. And so this is a very alarming statistics, isn't it, Divya? And according to the Indian Council of Medical Research, ICMR, the number of cancer cases in the country is projected to increase to 29.8 million by 2025.
भारत में कैंसर के सबसे आम प्रकार स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और मौखिक कैंसर है। फेफड़ों और मौखिक कैंसर के बढ़ते मामलों में तंबाकू का सेवन महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्रीय कैंसर दिवस और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस का प्राथमिक लक्ष्य शीघ्र पता लगाने के महत्व पर जोर देना है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि कैंसर का शीघ्र पता लगाने से जीवित रहने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, शुरुआती चरण में पाए गए स्तन कैंसर के लिए 5 साल के जीवित रहने की दर 99% तक हो सकती है, लेकिन उन्नत चरण में कैंसर का निदान होने पर यह लगभग 27% तक गिर जाती है। इस तरह से शुरुआती चरण में फेफड़ों के कैंसर का निदान करने वाले 61% लोग कम से कम 5 साल तक जीवित रह सकते हैं।
Yes, and cervical cancer, which is highly preventable through regular screening, still claims the lives of over 60,000 women in India annually due to a lack of awareness and access to preventive healthcare. And the National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke is a government initiative for cancer prevention. It aims to address this issue by promoting cancer awareness and facilitating the screening of common cancers at the primary healthcare level.
और कैंसर के उपचार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी सरकार की उन पहलों में से एक है जिसने लाखों कम आय वाले परिवारों को मुफ्त कैंसर इलाज प्रदान करने में प्रगति की है। इस योजना के तहत लाभार्थी देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त कैंसर उपचार का लाभ उठा सकते हैं। ये कई परिवारों के लिए जीवन रेखा रही है जो अन्यथा कैंसर देखभाल की उच्च लागत वहन करने में सक्षम नहीं होते।
Yes, and many corporations have launched corporate social responsibility CSR initiatives aimed at cancer awareness, prevention and treatment. For example, Divya, the Tata Memorial Hospital, one of India's leading cancer care centers, has been at the forefront of cancer treatment and research. The hospital has also partnered with several corporations to fund cancer research and provide free or subsidized treatment to underprivileged patients. And the International Agency for Research on Cancer, IARC, was created in 1965 by a resolution of the World Health Assembly as a specialized cancer agency of the World Health Organization. And Divya, India, cancer is indeed a very dreaded disease, and we see here that a lot of research has gone into its treatment and to find a cure. And to close our discussion on the National Cancer Awareness Day, I want to leave our listeners with the words of Theodore Roosevelt, who said, "When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on." Yes, and now to move on to our second topic of the day, Divya, the Chhath Puja. Well, the four-day festival of Chhath has been celebrated with religious fervor and gaiety in different parts of the country. And on the third day today, devotees who have started 36 hours fasting will pay oblations to the setting sun this evening.
बिहार में अनुष्ठान के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं, जहां भक्त गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, पुनपुन और अन्य नदियों के खूबसूरती से सजाए गए तटों पर कमर तक पानी में डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। पूरा वातावरण भक्तिमय गीतों से गूंज रहा है। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ये महापर्व सम्पन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि छठ पूजा देश के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। इस पर्व में सूर्य की पूजा की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये त्योहार प्रकृति के अनूठे उपहार नदियों और तालाबों का सम्मान करता है और कठोर उपवास के माध्यम से मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कामना की कि ये त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाएगा और प्रकृति के प्रति श्रद्धा बढ़ती रहेगी।
वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज एक्सटेंडेड हिज ग्रीटिंग्स टू द नेशन ऑन द ओकेशन ऑफ छठ पूजा। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट ही विश्ड दैट द फेस्टिवल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। ही डिस्क्राइब्ड द फेस्टिवल ऑफ वर्शिपिंग द सन गॉड एज अ सेलिब्रेशन ऑफ इटर्नल ट्रेडिशंस एज वेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ डीप बॉन्ड विद नेचर। द वाइस प्रेसिडेंट एक्सप्रेस्ड होप दैट द ब्लेसिंग्स ऑफ छठी मैया विल गाइड द nation towards progress and prosperity. And Prime Minister Narendra Modi has greeted the nation on the third day of the Chhath festival today. In a social media post, Mr. Modi said that the Chhath Sandhya Argya festival is a symbol of simplicity, restraint, determination and dedication. He further wished that this great festival brings happiness, prosperity and good fortune to everyone's lives. So on this auspicious occasion of Chhath Puja, may your life shine as bright as the sun.
What are you? और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Yes, and continuing the wave of festivities, and let us first take you to a ghat in Delhi. And several arrangements have been made at ITO Yamuna Ghat to facilitate the devotees on the third day of the ongoing Chhath Puja. The devotees will offer prayers to the setting sun this evening. At the worship venue, tents offering various facilities have been established to counter the heavy rush of devotees. We have more from our correspondent Bhanu.
As the third day of the Chhath festival arrives, devotees in great numbers are flocking to the ghats, preparing to offer their oblations to the setting sun. Arrangements including resting space, washroom, help desks, announcement booths among others have been made across various parts of Delhi to accommodate devotees to offer their prayers. To ensure everyone's safety, police personnel have also been deployed at the ghats and CCTV cameras have been installed. Notably, an artificial pond has been filled with water for the devotees amid the ongoing contamination of River Yamuna, and the entry to the river has been restricted as well. Talking exclusively to Akashvani News, Chhath Samiti organizer Prabhat Tripathi said, the Samiti is offering night stay as well as food facilities to the devotees as well.
पूरे पूर्वांचल समाज के लोग, यूपी बिहार से आए हुए लोग, गरीब तबके के लोग, जो लोग कहीं भी घरों में जिनके पास व्यवस्था नहीं है, वो लोग इन घाटों का प्रयोग करते हैं। समिति के तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं, जैसे कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में कोई भी बाहर न जाए, बाहर नदी में न जाए, उसके लिए हमने बैरिकेडिंग करके रखी है। आर्टिफिशियल घाट भी हमने बना रखे हैं यहाँ पर। किसी भी परिस्थिति में नदी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप टेंट में आप देखेंगे छोटे छोटे टेंट्स, ताकि उनको शीत न लगे। शीत
द फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू डिवोटीज फॉर फ्री एंड विल बी ओपन थ्रू आउट द छठ पूजा ड्यूरेशन। फॉर परिक्रमा, भानु प्रताप सिंह।
और छठ के इस पावन अवसर पर आइए सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन पर अपनी कृपा बरसाएं और हमारे घरों में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। और परिक्रमा में चलते हैं गुजरात देश के पश्चिमी हिस्से। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो आज भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हाल ही में गुजरात ने अपने नाम एक और नई उपलब्धि दर्ज कराई है। इसका कारण बना है नवीकरणीय ऊर्जा। हाल ही में अक्टूबर महीने में गुजरात ने इस क्षेत्र में इसी दौड़ पकड़ी है कि पूरे देश में आज गुजरात की गूंज सुनाई दे रही है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
गुजरात राज्य आज अपनी नई नई योजनाएं एवं नीतियां लागू करके कई क्षेत्रों में आगे ही आगे दौड़ पकड़ रहा है। हाल ही में अक्टूबर महीने में गुजरात ने 30 गीगावाट की रिकॉर्ड क्षमता स्थापित करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा में पूरे देश में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे ही उपलब्धियों की मदद से गुजरात आज राज्य रूफटॉप सोलर और पवन ऊर्जा इंस्टॉलेशन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बताया कि राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़े उद्योगों से लेकर छोटे डेवलपर्स तक के क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार क्रमिक नीतिगत सुधारों के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करती है। इतना ही नहीं, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2023-24 दौरान देश भर में 13 गीगावाट क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं। देश के डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य में अपना योगदान देने के लिए गुजरात ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय क्षमता का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया है और इसके लिए एक दीर्घकालिक रणनीति भी बनाई है। गुजरात सरकार की यह नई पहल राज्य को हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करके इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा होगी। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अडियचा।
Often known as the Switzerland of the Northeast, Nagaland is home to many different tribes and sub-tribes, with each tribe celebrating their festivals at different time throughout the year. Nagaland is also popularly known as a land of festival, and of all the important festivals in the state, Toku Imong Festival is the premier festival celebrated by the Lotha Naga tribe. We have more from our Kohima correspondent, Asuno.
Toku Imong, the post-harvest festival of the Lotha Naga tribe, settled in Nuwaka district, is being celebrated with much warmth and gaiety. Toku Imong is celebrated in the first week of November every year and it stretches over to 9 days. Earlier, no particular deed was fixed, however, in order to curb unity and uniformity among the rangers, Waka elders decided to celebrate it on a fixed deed. Following this, Toku Imong is celebrated on November 7th every year. During this festival, the entire village takes part in the celebration. Everyone attire themselves in their beautiful traditional dresses and costumes according to their social status. Let's get to know the significance of Toku Imong festival from Pentongo Nguli.
Toku Imong means feast and Imong means rest. Toku Imong marks the renewal of relationships between close friends and families. It is a festival of thanksgiving to God for the abundance of harvest and manifold blessings. Another important aspect of the festival is the release of the soul of death Piole by the families that mark separation between the living and the death.
Yes, and now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember one of the greatest freedom fighters, Bipin Chandra Pal, who was born on November the 7th, 1858, in Sylhet region of British India, which is now in Bangladesh. An early leader of the Indian nationalist movement, Pal was one of the Lal Bal Pal triumvirate, which also included Lala Lajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak.
The trio used to question the method of petitions followed by moderates and argued for direct action to achieve political objectives.
In 1886, Bipin Chandra Pal joined the Indian National Congress, and at the Madras session of 1887, he made a strong plea for repeal of the Arms Act, which was discriminatory in nature.
The Bengal partition of 1905 shook Bipin Chandra Pal deeply. He launched the journal Bande Mataram in 1906, which Aurobindo Ghosh soon joined as editor.
Bande Mataram, Bande Mataram, Bande Mataram.
Bipin Chandra Pal is known as the father of revolutionary thoughts in India. Along with Aurobindo Ghosh, he is recognized as the chief exponent of a new national movement revolving around the ideals of Purna Swaraj, Swadeshi, boycott and national education.
Mataram Vande. Bipin Chandrapal also helped set up Anushilan Samiti that supported revolutionary violence as a means for ending British rule in India and inculcated nationalist spirit among youth through weekly classes and interactions. He had no faith in mild protests in the form of non-cooperation, and on that one issue, he differed with Mahatma Gandhi.
In 1920, Pal was among the senior leaders who opposed Gandhi's resolution on non-cooperation over the fact that it didn't address self-government.
Bipin Chandrapal made his efforts to remove social and economic ills. He opposed the caste system and advocated widow remarriage. After his first wife died, he married a widow and joined the Brahmo Samaj. Bipin Chandrapal was a multifaceted personality that included being a leader, teacher, journalist, orator and writer. All India Radio salutes the nationalistic spirit of the great freedom fighter. Today we also remember freedom fighter and educationist Ashwini Kumar Datta, who left us on 7th November 1923. The partition of Bengal drew Datta to the Swadeshi movement, and he founded the Swadesh Bandhab Samiti to promote indigenous products and boycott foreign goods. In 1908, the government of the newly formed Eastern Bengal and Assam banned the Swadesh Bandhab Samiti and jailed Datta in Lucknow.
Bidhir badhon kadbe tumi amun shoktiman tumi ki emni shoktiman amader bhanga gora tomar hate amun obhiman tomader emni obhiman.
In 1921, Mahatma Gandhi visited Barisal to show respect to the great leader.
Today, we also remember freedom fighter and Bharat Ratna, Chidambaram Subramaniam, who died on 7th November 2000. During his college days itself, he was an active member of the civil disobedience movement against the British and was imprisoned during the Quit India movement in 1942. He was later elected to the Constituent Assembly and helped in the framing of the Constitution of India.
He served as Union Minister on many occasions and later also served as the Governor of Maharashtra. As the Union Minister for Food and Agriculture, he helped usher in the Indian Green Revolution. He was conferred with the Bharat Ratna in 1998. We salute this great Indian nationalist.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. भारत के किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. उन्होंने आज प्री क्वार्टर फाइनल में ताइवान के ची यू जेन को 21-17, 19-21, 21-17 से पराजित कर दिया. जॉर्ज ने कल पहले राउंड में अपने वियतनाम के प्रतिद्वंद्वी ग्वेन हाई डांग को कड़े मुकाबले में हराया था.
इन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ए 53-2 अगेंस्ट इंडिया ए इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑन डे 1 एट द ड्रॉ ऑफ स्टंप्स. इन द सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड द होस्ट्स आर ट्रेलिंग बाय 108 runs. And moving on to some business news today, domestic benchmark indices today slum over 1% ahead of US Federal Reserve's interest rate decision. The 30-share BSE Sensex tanked 836 points or 1.04% to close at 79,542, while the NSE Nifty 50 shed 285 points or 1.16% to settle at 24,199. In the global crude market, Brent crude was trading nearly 0.5% down at $74.57 per barrel, and WTI crude shed 0.7% to trade at $71.19 per barrel when reports last came in.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं
टेरेंस स्टीवन मैक्वीन पास्ड अवे ऑन दिस डे 1980. ही वाज एन अमेरिकन एक्टर. हिज एंटी हीरो पर्सोना एम्फसाइज्ड ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द काउंटर कल्चर ऑफ द 1960s मेड हिम अ टॉप बॉक्स ऑफिस ड्रॉ फॉर हिज फिल्म्स इन द 1960s एंड 1970s. ही वाज निकनेम्ड द किंग ऑफ कूल एंड यूज्ड द एलियस हार्वी मुशमन इन मोटो रेसेस. मैक्वीन रिसीव्ड एन एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन फॉर हिज रोल इन द सैंड Pebbles. His other popular films include The Cincinnati Kid, Nevada Smith, The Thomas Crown Affair, Bullet, The Gate Getaway, Papillion, in addition, he starred in the all-star ensemble films The Magnificent Seven, The Great Escape and The Towering Inferno.
और आज के दिन प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार बिहार के पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. बिहार कोकिला के नाम से मशहूर गायिका के पार्थिव शरीर का बड़ी संख्या में प्रशंसकों, समर्थकों और आम लोगों की मौजूदगी में पटना में गंगा नदी के तट पर गुलाबी घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे. मंगलवार को नई दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ. वो 72 वर्ष की थी. दिवंगत शारदा सिन्हा के गीत पारंपरिक त्योहारों और विशेष रूप से छठ तथा विवाह के अवसर पर लोगों को मंत्रमुग्ध भी कर देते थे और वो ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़ी रही थी.
Yes, and Joseph William Fraser passed away on this day in 2011. Nicknamed Smoking Joe, he was an American professional boxer who competed from 1965 to 1981. Widely regarded as one of the greatest heavyweight boxers of all time, he was known for his strength, durability, formidable left hand and relentless pressure fighting style, and was the first boxer to defeat Muhammad Ali. Frazier won a gold medal at the 1964 Summer Olympics as an amateur, held at the NYSAC heavyweight title from 1968 to 1973, and was the undisputed heavyweight champion from 1970 to 1973.
मद्रास की पहली महिला समाज सेविका तारा चेरियन की आज पुण्यतिथि है. वो मद्रास की पहली महिला थी जो मेयर बनी. मेयर के रूप में उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा पद्धति में सरलता एवं अनुकूल वातावरण का समावेश कराया और दोपहर में पोषक तत्वों से पूर्ण स्वल्पाहार की व्यवस्था कराई, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ. तारा चेरियन के सेवा भाव को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था. तारा चेरियन के मन में दिव्यांगों की सहायता करने का विशेष महत्व था. वो कहती थी कि दिव्यांगों की सेवा मानवता की सबसे महान सेवा है.
पार्थसारथी श्रीनिवासन वॉज बोर्न ऑन दिस डे 1954, नोन प्रोफेशनली एज कमल हसन. ही इज एन इंडियन एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, कोरियोग्राफर, प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, टेलीविजन प्रेजेंटर, सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन हु वर्क्स इन तमिल सिनेमा. Besides Tamil films, he has also appeared in some Malayalam, Telugu, Hindi, Kannada and Bengali films.
और आज महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती है. उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ. सीवी रमन ने 28 फरवरी को 1928 को रमन प्रभाव की खोज की, तो भारत सरकार ने उस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया. वैज्ञानिक सीवी रमन को 1924 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य के रूप में चुना गया और उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, जो प्रकीर्णन और रमन प्रभाव जैसी तार्किक प्रगति के लिए एक उल्लेखनीय और प्रतिष्ठित सम्मान था.
Yes, Nandita Das was born on this day. She is an Indian actress and director. She has acted in over 40 feature films in 10 different languages. Das has appeared in films Fire, Earth, Bavandar, Kanathil, Muthamittal, Azagi, Kamli and Before the Rains. Her directorial debut, Firaq, premiered at the Toronto Film Festival and traveled to more than 50 festivals, winning more than 20 awards. And her second film as director was Manto in 2018.
और आज कमल हसन की भी का भी जन्मदिन है. दुनिया में अपनी अलग ही अदाकारी के लिए मशहूर दक्षिण भारतीय फिल्मों के सबसे ज़्यादा अनुभवी अभिनेता की उपाधि से सम्मानित हैं ये. कमल हसन को दिए गए सम्मानों की सूची बहुत लंबी है. इन्हें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 13 दक्षिण भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड, 2 फिल्म फेयर अवार्ड, 3 नंदी अवार्ड और 9 तमिलनाडु स्टेट नेशनल अवार्ड प्रदान किए गए हैं. इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है. आइए सुनते हैं इनकी फिल्म का ये गीत.
टेलीफोन धुन में हंसने वाली मेलबर्न मछली मचलने वाली डिजिटल में सुंदर है तराशा मैडोना है या नताशा सबके रोशन तबला तो है क्या सोना.
पिछले 4 दशक के लंबे सिने करियर में कमल हसन ने कई सुपरहिट फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता और उन्होंने न सिर्फ अभिनय से बल्कि गायकी, निर्माण, निर्देशन, पटकथा, लेखन, गीतकार सब दिशा में, सब क्षेत्रों में अपना दीवाना बनाया है सब लोगों को. आइए सुनते हैं उनका
डायलॉग.
कुछ नहीं, एक चाय का सवाल है.
अरे क्यों?
अरे जाना तो मुझे भी है.
सॉरी मैम. अरे भाई, रात भर एक छोटी सी नाव में बैठकर जाता रहा.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए दिव्या तोमर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का। नमस्कार।